بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ ناظرین، آج صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا یوم شہادت ہے، اس مناسبت سے آپ سب کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے امریکہ اور روس کے درمیان جب کلش اور تنازع۔ اس موضوع پر گفتگو ہوگی معزز مہمانوں سے، مگر مختصر سے وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، آپ نے یقیناً خبروں میں سنا ہوگا کہ ان دنوں امریکہ اور روس کے درمیان ایک بار پھر سرد جنگ جیسا ماحول پیدا ہوا چاہتا ہے، اور روس کے بار بار انتباہ اور خبردار کرنے کے باوجود امریکہ نے میگنسکی قانون کے تحت ان روسی عہدیداروں کی فہرست شائع کر دی جن کے بارے میں امریکی حکام یا امریکی ادارے یہ کہتے ہیں کہ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں ملوث رہے ہیں۔ چنانچہ اس فہرست کو شائع کر دیا گیا جس میں روس کے 18 سرکاری عہدیداروں کے نام شامل ہیں اور جن پر امریکہ میں داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، اور امریکی وزارت خزانہ نے ان کے بینک اکاؤنٹس بھی منجمد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اگرچہ روس نے بار بار اس قانون پر عمل آوری کے تعلق سے امریکہ کو خبردار کیا تھا، لیکن امریکہ نے بالآخر یہ فہرست جاری کر دی۔ اس کے جواب میں روس نے بھی یکالوف قانون کے تحت 18 امریکی عہدیداروں پر بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا الزام عائد کرتے ہوئے ان کو بلیک لسٹ کر دیا ہے۔ بہرحال یہ اقدام اور جوابی اقدام کا سلسلہ جاری ہے، اور اس کے تحت دونوں ملکوں کے تعلقات اس وقت سخت کشیدہ ہیں، یہاں تک کہ روس میں خارجہ پالیسی کمیشن کے جو دوما میں چیئرمین ہیں، انہوں نے، جن کا نام یاشکوف ہے، یہ کھل کر کہہ دیا ہے کہ اب روس اور امریکہ کے تعلقات انتہائی خراب ہو چکے ہیں اور دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہ گئی ہے۔ بہت سارے سوالات ہیں اس ضمن میں کہ امریکہ نے یہ فہرست شائع کر کے یا جاری کر کے کیا حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، یا امریکہ آخر انہی ملکوں کے خلاف اس طرح کی باتیں یا انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا الزام کیوں عائد کرتا ہے جو امریکی ڈکٹیشن کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، یا جو امریکی پالیسیوں کے مخالف ہوتے ہیں، یا جو امریکہ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور یہ کہ امریکہ کو اس طرح کا حق کس نے دیا ہے کہ وہ جس کے خلاف چاہے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا الزام عائد کر دے، اور یہ حق امریکہ کو کہاں سے حاصل ہے کہ انسانی حقوق کی پامالی یا انسانی حقوق کی پاسداری کا معیار وہ خود تعین کرے۔ بہرحال یہ وہ سارے سوالات ہیں جن کا ہم جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اپنے آج کے اس پروگرام میں، اور اسی سلسلے میں ہمارے ساتھیوں نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، پہلے اسے دیکھتے ہیں پھر اپنے معزز مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
روس اور امریکہ کے درمیان کشیدگی میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور بظاہر اس کشیدگی کی وجہ امریکہ میں منظور ہونے والا میگنسکی نامی وہ قانون ہے جو کئی مہینوں سے دونوں ملکوں کے تعلقات میں تلخی گھول رہا ہے۔ دراصل روسی شہری سرگئی میگنسکی برطانوی کمپنی ہرمیٹیج کا ایک 27 سالہ وکیل تھا، جسے سن 2009 میں ٹیکس چوری کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا تھا، اور بعد میں ماسکو کی ایک جیل میں اس کی موت ہو گئی، اور امریکہ نے اسی کے نام سے قانون منظور کیا جس کی روح سے امریکی حکام ان روسی حکام کو ویزا دینے سے انکار کر سکتے ہیں جنہیں وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی میں ملوث سمجھتے ہوں۔ اسی طرح ایسے روسی حکام کے اثاثے منجمد کرنے کا بھی امریکی حکومت کو اختیار حاصل ہو گیا ہے۔ روسی حکام کے خلاف میگنسکی قانون کے جواب میں روس نے بھی 18 امریکی حکام کے ملک داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اس سے قبل امریکی وزارت خزانہ نے اپنی ویب سائٹ پر میگنسکی فہرست شائع کی جس میں روس کے ایسے 18 حکام کے نام درج ہیں جن کے امریکہ میں داخلے پر پابندی ہے اور ان کے اثاثے بھی منجمد کر لیے گئے۔ ماسکو نے کچھ روسی حکام پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے بہانے پابندی پر کئی بار سخت اعتراض کیا ہے، تاہم اب 13 اپریل کو روسی وزارت خارجہ نے ایک بلیک لسٹ جاری کی ہے جس میں کئی امریکی حکام پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ 18 امریکی حکام کے روس میں داخلے پر پابندی عائد کی جاتی ہے۔ روس کی جانب سے جاری اس فہرست میں ایف بی آئی کے ایک کارکن اور گوانتنامو جیل کے 2 کمانڈروں کے نام بھی شامل ہیں۔ روسی وزارت خارجہ نے اسی کے ساتھ یہ بھی اعلان کیا ہے کہ فہرستوں کی جنگ ہم نے شروع نہیں کی، لیکن اس قسم کی کھلی دھمکی پر ہم خاموش بھی نہیں رہ سکتے۔ اس سے قبل بھی ماسکو نے 12 اپریل کو خبردار کیا تھا کہ امریکی حکام کی جانب سے پابندیوں کی فہرست جاری کرنے سے دونوں ملکوں کے تعلقات پر بہت منفی اثر پڑے گا۔ روسی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اس کی بلیک لسٹ میں ان امریکی حکام کے نام ہیں جو گوانتنامو جیل میں ٹارچر اور غیر معینہ مدت تک کے لیے اس جیل میں لوگوں کو قید رکھنے کو قانونی شکل دینے، نیز روسی شہریوں کے اغوا میں دخیل رہے ہیں۔ روسی پارلیمنٹ نے بھی جنوری 2013 میں ایک ایسا قانون منظور کیا تھا جس کی روح سے امریکی روسی بچوں کو گود نہیں لے سکیں گے۔ روس نے امریکہ کے میگنسکی قانون کے مقابلے میں اس قانون کا نام دیما یا کو فلوک رکھا ہے، جو 18 ماہ کا بچہ تھا اور اپنے امریکی سرپرست کی لاپرواہی کی وجہ سے مر گیا تھا۔ اس روسی بچے کو گود لینے کے بعد اس کے امریکی سرپرست نے شدید گرمی میں اسے ایک بند کار میں چھوڑ دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ تاہم اس کے امریکی سرپرست کو امریکہ کی عدالت نے باعزت بری کر دیا تھا، جس پر روسی حکام نے سخت اعتراض کیا تھا۔ تجزیہ نگاروں کے مطابق روس امریکہ کے درمیان کشیدگی کی بہت سی وجوہات ہیں، جو ان وجوہات سے بہت اہم اور زیادہ مؤثر ہیں جن کا ذکر فریقین کی جانب سے حالیہ دنوں میں کیا جا رہا ہے۔ کچھ تجزیہ نگار روس اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کو جزیرہ نمائی کوریا میں جاری کشیدگی سے جوڑ کر دیکھ رہے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ اگر حالات یہی رہے تو دونوں ملکوں کے درمیان سرد جنگ کی اسی صورتحال دوبارہ پیدا ہو سکتی ہے۔
جی ہاں، اگر صورتحال ایسی جاری رہتی ہے تو سرد جنگ کے حالات دوبارہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ ماہرین کا تجزیہ کچھ ایسا ہی ہے۔ اس وقت چلتے ہیں لندن اسٹوڈیو، جہاں پر موجود ہیں عالمی امور کے ماہر اور سینئر تجزیہ نگار جناب علی جعفر زیدی صاحب۔ السلام علیکم جناب۔
جی وعلیکم السلام۔
زیدی صاحب، امریکہ یا امریکی وزارت نے یا امریکی اداروں نے میگنسکی قانون کے تحت جو یہ بلیک لسٹ جاری کی ہے، جبکہ روس نے بار بار استدعا کی تھی، درخواست کی تھی، مطالبہ کیا تھا، حتیٰ دھمکی بھی دی تھی کہ ایسا نہ کرے امریکہ، لیکن پھر بھی جاری کر دی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ اس اقدام سے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے؟
جی، یہ تو ایکسکیوز ہے، اور یہ ٹٹ فار ٹیٹ جو روس نے بھی کیا اور امریکہ کے جواب میں انہوں نے بھی لسٹ ایشو کی ہے، یہ تو ایک ٹٹ فار ٹیٹ کا معاملہ ہے، جو کہ فوراً یعنی وزارت خارجہ دونوں ممالک کے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اس میں کر رہے ہیں۔ اصل معاملہ ہے یہ سرد جنگ، لوگ تو کہتے ہیں کہ ابھی نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ سرد جنگ کی ابتدا دونوں ممالک میں ہو چکی ہے، اور یہ ابتدا ہوئی تھی لاسٹ ایئر جب ٹام ڈونیلون، جو کہ اوباما کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں، انہوں نے روس کا دورہ کیا، اور اس دورے کے نتیجے میں وہ سب کچھ حاصل نہیں ہوا جو وہ چاہتے تھے۔ اور وہ چاہتے یہ تھے کہ سیریا پر روس وہی لائن اختیار کرے یا امریکہ کی مدد کرے، جس طرح لیبیا پر سیکیورٹی کونسل کا 1973 جو انہوں نے ریزولوشن لا کر لیبیا پر حملہ، فضائی حملے کی اجازت لی تھی کہ وہاں کے شہریوں کو ہم حفاظت دینے کے لیے حملہ کریں گے، تو وہ سب کچھ وہ نہیں سیریا کے معاملے میں حاصل کر سکے۔ اس کے بعد نارتھ کوریا کا بہت بڑا ایشو ہے، جس پر امریکہ کو وہ سپورٹ روس سے نہیں مل رہی جو کہ انہیں چاہیے، اور اس سے پہلے ایران کے نیوکلیئر پروگرام پر بھی جو امریکہ کا ہدف رہا ہے، روس اور چین نے اس کی اس طرح سے اس کی مدد نہیں کی۔ چنانچہ یہ سرد جنگ تو جاری ہے، اور اس سرد جنگ میں अमेरिका चूंकि दुनिया में एक अपना नया वर्ल्ड ऑर्डर जो लाया है और उसको वो इम्प्लीमेंट कर रहा है, कहाँ पर कहीं पर वो जंगें मुसल्लत करके नेटो की फौजें उतार के, कहीं पर हुकूमतों को तब्दील करके, कहीं पर हुक्मरानों को मार कर, तो वो जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को हासिल वो करना चाह रहा है और आहिस्ता आहिस्ता पूरे ग्लोब का इंचार्ज वो बनना चाहता है, तो पुतिन की सरबराही में रूस अब उस पोजीशन में है कि वो उसको ये नया वर्ल्ड ऑर्डर में अकेला उसको वो नहीं खुली छुट्टी देने को तैयार, और जो दुनिया में जो स्ट्रेटजिक इश्यूज हैं जो दूसरे ममालिक के भी इम्पॉर्टेंट इश्यूज हैं, अपनी कौमी सलामती और कौमी जो उनकी हदफ हैं उनकी रोशनी में, तो पुतिन वो सब कुछ नहीं होने दे रहा। जबकि मगरबी साम्राज्य का ये ख्याल था कि बोरिस यल्सिन ने जो रूस के हाथ में कशकोल पकड़ा दिया था, उसके बाद रूस उनका हाशिया बरदार बन जाएगा और वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के मातहत रहते हुए वहाँ की इकोनॉमी मकरूज रहेगी और वो अमेरिका का दुमछल्ला बनकर वहाँ का जो नया वर्ल्ड ऑर्डर दुनिया पे वो इम्पोज करना चाहते हैं उसकी वो मदद करेंगे। तो ये सब कुछ नहीं हो पा रहा। अमेरिका और अमेरिकी हुकाम और पेंटागन इस बात से खुश नहीं है और उसको सामने रखते हुए
जी
ये जो इंसानी हकूक की के हवाले से इन्होंने जो ये मामला शुरू किया है, तो उसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो रूस ने लिस्ट शाया की है 18 लोगों की,
जी
उसमें वो बड़े नाम हैं जिन्होंने जो तशद्दुद यानी टॉर्चर को लीगलाइज करने का काम किया, जिन्होंने गुएंटानामो बे में को कायम करने में मदद की, और जबकि अमेरिका ने जो लिस्ट शाया की है उसमें वो लोग हैं जिसमें कुछ ड्रग में इन्वॉल्व लोग हैं, कुछ आर्म्स डीलिंग में थे, उनके इन्होंने एसेट्स को कन्फिस्केट किया है, लेकिन जो रूस ने लिस्ट शाया की है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और उसमें ये चार नाम तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं
जी,
जिसमें एक तो उनके डेविड एडिंगटन हैं जिन्होंने जो वाइस प्रेसिडेंट साबिक जो थे डिकचीनी उनके वो चीफ ऑफ स्टाफ थे और उन्होंने लीगल सपोर्ट दी थी इंटरोगेशन की जो पॉलिसीज हैं उन पर। इसके बाद दूसरा अहम नाम है जॉन यू का
जी,
जो कि बहुत हाई रैंकिंग लॉयर हैं जिन्होंने सेवरल जो बहुत से लीगल इश्यूज टॉर्चर को करने के लिए उन्होंने उसको लीगल सपोर्ट मुहैया की थी। और तीसरा और चौथा नाम बहुत अहम है, एक मेजर जनरल जेफरे डी मिलर हैं और चौथे हैं रियर एडमिरल जेफरे हार्डबिसन। ये वो हैं जिन्होंने गुएंटानामो बे में ऑपरेशन किया और अब तक कर रहे हैं। तो जो ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन है वो उसकी तो बदतरीन मिसाल गुएंटानामो बे इटसेल्फ है, और ये चारों हजरात वो हैं जिन्होंने ह्यूमन राइट्स की आलमी सतह पर वायोलेशन की है और ये तमाम के तमाम वॉर क्रिमिनल्स की लिस्ट में आते हैं। तो रूस ने जो लिस्ट दी है वो वाकई उन लोगों की है जिन्होंने ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन की है, और अमेरिका ने तो महज एक लिस्ट बहाने के तौर पे इशू की और रूस ने बड़ा सख्ती से जो जवाब दिया है वो बहुत अहम है। और अब रूस उस तरह की डिक्टेशन, उन्होंने कहा है कि हम अमेरिका की डिक्टेशन लेने को बिल्कुल तैयार नहीं।
जी जी बहुत शुक्रिया।
इस तमाम मामले में जी
जी माफ़ कीजिएगा जैदी साहब, मैं फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में, काफ़ी देर से मुंतजर हैं। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर पाकिस्तान के सीनियर और बुजुर्ग सियासत तजिया निगार आगा मसूद हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम जनाब।
वालेकुम सलाम
आगा साहब। अभी हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान लंदन में अली जाफर जैदी साहब फरमा रहे थे कि पुतिन के आने के बाद अब रूस बोरिस जेल्सन वाला रूस नहीं रह गया और अमेरिका शायद इसी बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, और बहुत से मामलात खा वो नॉर्थ कोरिया का हो या शाम का हो हत्ता ईरान का हो, बहुत से मामलात में रूस वो नहीं कर रहा है जो अमेरिका चाहता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो नई लिस्ट है अमेरिका ने शाये की है और रूस के सरकारी अहदेदारों पर पाबंदियाँ आयद की या ब्लैक लिस्ट किया है, क्या इसका मकसद ये हो सकता है कि वो रूस पर दबाव डालना चाहता है, या दूसरा मकसद ये भी हो सकता है कि वो और रूस की ताकत और रूस के जवाबी इकदाम और रूस में कितना दमखम है ये आजमाना चाहता है?
मेरा ख्याल है कि ये जो आपका आखिरी जुमला ये बिल्कुल सही है कि वो ये आजमाना चाहता है कि रूस में कितना दमखम है, लेकिन शायद अमेरिका को इस बात का इदराक है कि ये अब वो रूस नहीं है कि जिसका आपने तस्किया जैदी साहब ने भी फरमाया, ये एक बदला हुआ रूस है और प्यूटिन के आने के बाद उनकी खारजा पॉलिसी में बड़ी तब्दीली आई है और वो तब्दीली इसलिए भी आई है कि वो ये अब ये कहते हैं कि ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है, ये अब यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं है, क्योंकि बड़े मसाइल जो है मुख्तलिफ रीजन में है और इस रीजन में जो मसाइल हैं उन मसाइल को हवा देने में अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस और उनके हवारी जो है ना ये शामिल हैं। तो ये बिल्कुल बात बजा है कि अब वो रूस नहीं है और रूस को ये मालूम है कि अगर इस तरीके से वो पसपाई इख्तियार करते रहे तो कल सेंट्रल एशिया का मसला जो है वो बड़ी तेजी से उभरेगा, और जाहिर है कि रूस आज भी अपने अपने इंटरनल पॉलिसी में भी और खारजा पॉलिसी में वो कहता है कि ये सारे एरिया जो है ये हमारे इन्फ्लुएंस के एरिए, तो जाहिर है कि ये चीजें जो है ना ये सामने आएंगी। और इन्होंने जो लिस्ट शाई की है, देखिए ये लिस्ट तो इसलिए शाई की है कि वो दे वांट टू पुट प्रेशर ऑन रशिया कि ये थोड़ी सी पसपाई इख्तियार करें या रशिया जो है वो यील्ड करे हो या फिर रशिया ऐसे इकदाम करे कि जो उसको काउंटर बैलेंस करते हैं। मैं समझता हूँ कि रूस अब अपनी फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से खासा मैच्योर हो गया है और उसको मेरा ख्याल है कि ये अभी इकदाम करने की वैसी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अमेरिका की पॉलिसी इस रीजन में तकरीबन फेल हो रही है और आपने देखा होगा कि किस तरीके से सीरिया में इन्होंने जो नाम नहाद जमहूरी ताकतों को खड़ा किया था, जिस तरीके से वो लोग दोहा के और सऊदी अरब के पैसे पे जो है वो लड़ रहे थे, उनको बाकायदा इमदाद भी मिल रही थी, तो अब वो भी चीजें बहुत कम हो गई हैं। और ये है कि अब ये बड़ी परेशानी है कि हम क्या करें बशर असद की हुकूमत को, उसको सवा दो साल हो गए हैं, वो बाकायदा इन रेबल्स का मुकाबला कर रहे हैं। फिर रूस ने एक बहुत अच्छी बात की जो मैं आपकी खिदमत में सुनने वालों के लिए बताना चाहता हूँ कि बशर असद जो है वो इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, वो कजाफी नहीं है, वो उसकी मुबारक नहीं है, इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं, उनको 70% वोट मिले हैं और उन्होंने प्रेजेंट रिफॉर्म्स के सिलसिले में इतने इकदाम किए हैं, यानी इस नाम नहाद जो इंसर्जेंसी है जिसको बाकायदा वेस्ट ने और कुछ मुस्लिम ममालिक ने हवा दी है और इसराइल इसमें पेश पेश है, इससे पहले भी उन्होंने प्रेजेंट रिफॉर्म्स किए हैं और उनके वालिद साहब ने भी इस सिलसिले में बड़े गाँव के अंदर तब्दीली की है। यही वजह है कि जितने भी इंसर्जेंट्स हैं ये वहां दाखिल भी नहीं हो सकते, तो ये बात भी मतलब लोगों को बहुत कम मालूम है कि बशर असद जो है वो इलेक्टेड प्रेसिडेंट है। माफ कीजिए, नाथन हाउस से ज्यादा उनको वोट मिले, इसको तो बहुत ही कम वोट मिले अभी इलेक्शन जो इसराइल में खत्म हुए। तो ये चीजें जो है ना ये बड़ी तब्दीली से आ रही है और मैं समझता हूँ कि अभी हाल ही में चीन और रूस के दरमियान एक इतिहाद कायम हुआ है। आपको मालूम है कि जी जिनपिंग जो है वो अपने पहले दौरे पे गए थे रूस और उन्होंने बाकायदा ये है कि बाहमी इतिहाद की बात की है और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने ये कहा कि जी ने कि साउथ चाइना में जिस तरीके से अमेरिका गड़बड़ पैदा कर रहा है तो हमें अब उन लोगों को अपना साथ बनाना चाहिए जो न्यूट्रल है, तो एक न्यूट्रल ब्लॉक भी मेरा ख्याल बहुत जल्दी फार ईस्ट में बन सकता है। तो अमेरिका को बड़ी तशवीश लाहक है और ये तशवीश जो है ना मजीद आगे बढ़ेगी। उसकी वजह यह है कि रूस और चीन का जो इतिहाद कायम हुआ है जी के जाने से, ये एक बहुत बहुत बड़ी पेशरफ है और उन कुवतों के लिए पेशरफ है कि जो साम्राज्य की रिशाजवानियों से तंग हैं, उनसे परेशान हैं, वो समझते हैं कि उनकी आजादियों को ये सल्व करना चाहते हैं, उनके वसाइल पर कब्जा करना चाहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि रूस का जो इकदाम है ये बहुत अच्छा है।
जी, आपने भी सीरिया का जिक्र किया और हमारे लंदन के मेहमान जैदी साहब ने भी कहा कि सर्द जंग जो खत्म हो चुकी थी अब दोबारा शुरू हो चुकी है रूस और अमेरिका के दरमियान। इस दौरान आपने जो सीरिया का हवाला दिया उसके ही तनाजुर में पूछना चाहूँगा कि बहुत से सफारतकारों का ये कहना है कि शाम में जो कुछ हो रहा है ये सर्द जंग के ही मनाजिर पेश कर रहा है, तो क्या इस बात को तस्लीम किया जा सकता है कि इस वक्त जो शाम में जंग लड़ी जा रही है वो सर्द जंग का नतीजा है?
नहीं नहीं, मैं समझता हूँ कि ये तारीख को हम बहुत दूर ले जा रहे हैं और हमें तारीख को इतना दुख लगना चाहिए। कुल बाकायदा ये हुआ है कि जब से तूनिस में और इजिप्ट में और लीबिया में और लीबिया में जिस तरीके से नेटो और उनके हवारी कामयाब हुए, इससे उन्होंने यही ये नतीजा किया कि हम इसी पॉलिसी को जो है ना हम शाम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उन्होंने की लेकिन नाकाम रहे। और लीबिया का मसला तो ये था कि कदाफी जो थे वो बिरादर थे, वो कोई इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं थे, तो वहाँ तो वो ये कामयाब हो गए, लेकिन यहाँ पर तो जाहिर है कि जैसे कि मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि 70% वोट मिले हैं बशर असद को, ही इज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया और उनको अभी तक बहुत बड़ी हिमायत हासिल है। और ये भी आपकी खिदमत में आज करना चाहता हूँ मौदेबाना तौर पर कि उनकी जो आर्मी इस वक्त जो लड़ रही है वो अलवाइट नहीं है, उसके अंदर क्रिश्चियंस भी हैं, उसके अंदर सुन्नी भी हैं, उसके अंदर शिया भी हैं और भी बहुत से लोग हैं जो कंपोनेंट जो है आर्मी का वो बिल्कुल मल्टी लिंग्विस्टिक है। तो ये जो बाज हमारे बाज ममालिक साम्राज्य के कहने पे शिया सुन्नी का जो रंग दे रहे हैं कि अलवाइट शिया हैं, ये तो बिल्कुल वही तरीका है कि जो मुसलमानों को तकसीम करने के लिए ये तरीका बहुत आसानी से साम्राज्य इस्तेमाल करता रहा है माजी में भी और अब भी ये इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन जो कंपोनेंट है यानी जो सीरियन आर्मी का उसमें इस किस्म की कोई तफरीक नहीं है। और अगर आप ही तो आप देख लीजिए अभी क्लिक करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा पूरी आर्मी का कंपोनेंट क्या, तो ये उसकी वजह से इनको पछताई भी हो और परेशान किए, तो ये सूरत हाल है एक्चुअली।
बहुत शुक्रिया, मैं फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में आगा साहब। जैदी साहब एक सवाल है जो काफ़ी तकरारी है और बहुत से लोग ये पूछते हैं और इसका जवाब भी बहुत सा दिया गया और आपसे भी मैं उसका जवाब सुनना चाहूँगा कि क्या वजह है कि अमेरिका उन्हीं मुल्कों के खिलाफ इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी की फहरिस्तें जारी करता है जो अमेरिका की डिक्टेशन कबूल करने को तैयार नहीं होते, या अमेरिका की मर्जी और उसकी तसल्लुत पसंदाना पॉलिसियों को बर्दाश्त नहीं करते?
जी यकीनन इसमें तो कोई दो राय नहीं है और अमेरिका के सामने अगर कोई भी अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर देखना चाहे तो वो चूंकि इस वक्त पूरे ग्लोब के इंचार्ज की हैसियत बज़ों में खुद उन्होंने इख्तियार कर लिया तो उनको ये काबिले बर्दाश्त नहीं है कि कोई भी कौम कोई भी मुल्क थोड़ा सा आज़ाद होकर और सिर उठाकर चलना चाहे, ये ऑब्वियसली उनको काबिले कबूल नहीं है कुजा ये कि उनकी आंखों में आंखें भी डालकर देख सके। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो तमाम ममालिक और अकवाम जो अमरीकी साम्राज्य की बालादस्ती को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है वो रांदाए दरगाह हैं अमेरिका की नज़र में और वहाँ पर ह्यूमन राइट्स भी की वायलेशन भी होती है और वहाँ न जाने क्या क्या कुछ होता है और अमेरिका तो ज़मीन पर एक ऐसी जन्नत है जहाँ पर ना इंसानी हकूक़ की वायलेशन होती है, जहाँ पर दूध की नहरें बहती हैं और न जाने क्या क्या। अगर अमेरिका के अपने अंदर जाकर, मैं तो कई बार वहाँ गया भी तबसरे भी किए और लिखा भी कि उनका अपना जो अंदर का माशी ढांचा है वो इतना खोखला हो चुका है कि आज अमेरिका की इकॉनमी चाइना के बॉन्ड्स पर, आज चाइना अगर अपने बॉन्ड्स विड्रॉ कर ले तो अमेरिका एक बैंकरप्ट कंट्री है, वहाँ के जो अवाम की हालत है वो दुनिया में अमेरिका और वेस्ट का मीडिया कभी नहीं दिखाता, वहाँ एक एक वक्त की रोटी नसीब नहीं हो सकती, लोग 5-5 मील तक पैदल सफ़र करते हैं क्योंकि उनके पास बस में सफ़र करने के लिए पैसे नहीं होते। तो ये सब जो मामलात हैं और वहाँ का जो क्राइम रेट है और जहाँ वहाँ जो गरीब और अमीर के दरमियान का फ़र्क आ चुका है और वहाँ जो ये जो ह्यूमन राइट्स की सबसे बड़ी वायलेशन तो ये कानून जो मैग्निट्स्की के एक्ट के तहत वो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया और उससे पहले भी वहाँ पर जिसको चाहें रस्ते में पकड़ के और बिलखसूस काले जो हैं उनको पकड़ के जब चाहें अंदर कर दें और जब जितना अरसा चाहें रखें, गुआंटानामो बे में कितने साल से लोग पड़े हुए हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं, कोई कानून वहाँ पर लागू नहीं। तो ये सब जो ह्यूमन, ये सब क्या इंसान नहीं है? क्या ह्यूमन राइट्स सिर्फ वहीं अमेरिका को नज़र आते हैं जहाँ पर वो देखना चाहता है और उसके अपने घर में जो वायलेशन हो रही है उसको वो ना सिर्फ देखता है बल्कि उसको इम्प्लीमेंट करता है और बाहर से पकड़ पकड़ के ला के अपने मुखालफीन
जी
जिनको इसने खुद पैदा किया, अलकायदा अलाबला इसने खुद पैदा किए थे और जब चूंकि वो इनको सूट नहीं करते तो उठा कर ला के उनको बंद करते हैं। और सबसे बड़ा मैं समझता हूँ दुनिया में सबसे बड़ा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करने वाला जो मुल्क है वो अमेरिका बजाय खुद है
जी। بہت شکریہ، میں پھر حاضر ہوں گا۔ آغا صاحب، جیسا کہ ابھی زیدی صاحب نے کہا کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے والا سب سے بڑا ملک خود امریکہ ہے، گوانتانامو، ابو غریب جیل اور بگرام ایئر بیس کے ہوتے ہوئے کس نے یہ حق امریکہ کو دیا ہے کہ وہ دوسرے ملکوں کے خلاف انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے تعلق سے فہرستیں جاری کرتا پھر؟
دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بات زئی صاحب نے کہی ہے بالکل صحیح فرمائی ہے۔ بات اصل یہ ہے کہ خود امریکہ کا جو تھنک ٹینک ہے، اب وہ خود مطلب اندرونی طور پر اپنا آپ احتساب کر رہے ہیں، اور انہیں یہ احساس ہو گیا ہے کہ امریکہ جس طریقے سے دوسروں کے ملکوں میں مداخلت کرتا ہے اور اپنے طرز کی جمہوریت کو وہاں رائج کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے طریقہ کار کو وہاں انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ اب یہ بات چلے گی نہیں، کیونکہ 12 سال سے یہ آکوپائی کیے ہوئے ہیں افغانستان کو، جہاں ان کو پسپائی ہوئی ہے اور وہاں پہ ان کا میرا خیال ہے $1 ٹریلین نقصان بھی ہوا ہے اور کوئی ان کو فوائد حاصل نہیں ہوئے۔ اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے وہاں باعث طور پر نکل جائیں، تو وہاں سے ابھی نکلنے کے امکانات بھی جو ہے باعث طور پر بہت کم نظر آ رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خود اوباما نے یہ بات کہی ہے اپنی اسٹیٹ آف دا یونین میسج میں کہ اب ہم دوسروں ہمیں اپنے اب جنگ سے اجتناب برتنا چاہیے، جنگ سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، اس سے ہمیں دوری اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے امریکہ کو بہت نقصان ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں خود امریکہ کے دانشوروں میں جو ہے نا اب سوچ پیدا ہو رہی ہے، کیونکہ دیر آئے درست ہے اگر امریکہ کے فکر میں یہ بات شامل ہو جائے کہ دوسروں ملک میں مداخلت کرنا، ان کے طرز حیات کو جو ہے متاثر کرنا اور ان کی سوچ کو متاثر کرنا، یہ تو کہیں بھی کسی بھی مطلب یہ کہ دنیا میں یہ طریقہ کار رائج نہیں ہوا۔ تو میں میری اپنی سوچ یہ ہے کہ ایک نیا مطلب سوچ کا دھارا پیدا ہو رہا ہے امریکہ کے اندر، اور اس کا جو وائلیشن ہے وہ میرا خیال ہے کم ہوگا، کیونکہ لوگوں کو اب یہ ادراک ہے کہ امریکہ کے سامنے کھڑے ہونا چاہیے۔ تیسری دنیا کے چھوٹے ممالک بھی اب یہ سوچ رہے ہیں کہ جب تک وہ کھڑے نہیں ہوں گے، ونزولا کی مثال آپ دیکھ لیجیے، شاویز کی مثال دیکھ لیجیے کہ اس نے کس طریقے سے امریکہ سے آنکھ ملائی اور اس نے اس کے بعد جناب اپنے ملک کو سنوارا، غربت کو ختم کیا۔ تو یہ بھی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، کیوبا کے ہمارے سامنے مثال ہیں، پورا لاطینی امریکہ اب جاگ رہا ہے۔ یہ ہمیں سوچنا چاہیے اور امریکہ کے تھنک ٹینک کو سننا چاہیے کہ بیرونی مداخلت سے ان کو بہت نقصان ہوا ہے، ان کی اکنامی، جیسے زیدی صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ ان کی اکنامی جو ہے وہ بالکل کولیپس ہو رہی ہے، اگر چین ان کی مدد نہ کرے تو صورتحال اور بھی خراب ہو جائے گی۔ تو سب سے بڑا جو وائلنس یہی ہے، امریکہ کو سوچنا چاہیے کہ اس سے صاف ختم ہو رہی ہے، لوگ اس سے دوری اختیار کر رہے ہیں، خود پاکستان جیسے ملک میں ہے کہ جہاں پہ دہشت گردی بہت عام ہے، وہاں پہ بھی اب لوگ سوچ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ اتحاد کرنا یا ان کا خاصے لچے کرنا خود پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری کے خلاف ہے۔ تو یہ بالکل صحیح ہے کہ وائلیشن خود ہی کر رہے ہیں۔
جی، بہت شکریہ آپ کا۔ زیدی صاحب، سعودی عرب میں کیا انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہوتی؟ بحرین میں، قطر میں، اور سب سے بڑھ کر آئے دن جو فلسطین میں اسرائیلیوں کے ہاتھوں مارے جا رہے ہیں فلسطینی، وہاں خلاف ورزی نہیں ہو رہی ہے؟ گولڈ اسٹون کی جی رپورٹ تھی جنگی جرائم کے ارتکاب کے تعلق سے 22 ہزار جنگ میں، کیا وہ انسانی حقوق اور جنگی جرائم کا ارتکاب نہیں تھا؟ امریکہ نے کیوں نہیں فیری جاری کی آپ کے خیال میں سعودی عرب، بحرین، اسرائیل اور مصر کے، یعنی مبارک کے مصر کے تعلق سے، یا اردن میں یا قطر وغیرہ میں؟
جی، وہ چونکہ یہاں ان تمام ممالک کے حکمران امریکہ کے بغل بچے ہیں، حاشیہ بردار تو بہتر لفظ ہے، بغل بچے ہیں، اور اس کی بغل میں بیٹھ کے جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ وہی ہے جو امریکہ چاہتا ہے، اور امریکہ ایک ملک میں تو اس کو ہیومن رائٹس نظر آتے ہیں، دوسرے ملک میں وہ ہیومن رائٹس کی پامالی انہی کے ذریعے خود کرواتا ہے۔ تو یہ دوہرا معیار موجود ہے، اور یہ دوہرا معیار اب دلچسپ بات یہ ہے اور پازیٹو بات یہ ہے کہ دنیا کے عوام پر ایکسپوز ہو رہا ہے۔ تمام سعودی عرب جیسے ملک میں بھی، جہاں پر کے بادشاہت اپنی بدترین شکل میں ڈکٹیٹرشپ ہے، وہاں پر بھی عوام میں یہ جو انسانی حقوق کی پامالی ہے وہ نہ صرف نظر آ رہی ہے بلکہ اس کے خلاف لوگ سڑکوں پر نکل رہے ہیں، ویسٹ اس کو دکھاتا نہیں ہے، اور جو یہ بادشاہتیں ہیں یہ ایک ایسے لاوے پر بیٹھی ہیں جو کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے۔ آتش فشاں کا یہ لاوا پک رہا ہے اور یہ کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے۔ چنانچہ امریکہ ان تمام جو ڈکٹیٹرز، ظالم اور بادشاہتیں اور عوام کا حق سلب کرنے والے حکمران، ان سب کا جو سرغنہ امریکہ ये सब मिल मिलाकर जो दुनिया में नई इमर्जिंग फोर्सेस हैं, जो दुनिया में एक नया नक्शा इमर्ज हो रहा है उम्मीद का और इंसान मज़लूम अवाम और अक्वाम के इत्तेहाद का, उसको गालबन ये देखना नहीं चाहते। लेकिन हकीकत ये है जो के यानी ग्राउंड रियलिटीज़ ये हैं कि पूरी दुनिया में अमेरिका के ख़िलाफ़ जितनी नफ़रत पहले कभी नहीं थी आज अपनी शिद्दत और अपने अरूज पर है वो नफ़रत। और उसकी बुनियाद ये है कि वो दोहरा मायार रखते हैं, जहाँ पर वो चाहते हैं हुक्मरानों को, डिक्टेटर्स को, मार्शल ला एडमिनिस्ट्रेटर जर्नल, इन सब को वो सपोर्ट करते हैं, अवाम का हक तलब करते हैं उन अवाम का जो कि अमेरिका को पसंद नहीं करते। चुनाचे एक बहुत बड़ी लहर है जो कि अमेरिका के खिलाफ एक नफ़रत की शक्ल में सऊदी अरब हो, बहरैन हो, जॉर्डन हो, या तमाम वो ममालिक जहाँ पर हुक्मरान जो हैं वो अमेरिका के हाशिया बरदार हैं, वहाँ पर एक शदीद नफ़रत की लहर है जो कि पाई जाती है। पाकिस्तान में भी अमेरिका के हाशिया बरदार जमातें भी, हुक्मरान भी, लोग न सिर्फ उनके ख़िलाफ़ हो चुके हैं बल्कि अमेरिका के की नफ़रत की वजह से उनके भी ख़िलाफ़ हो चुके हैं। चुनाचे दुनिया बदल रही है और इस बदलती दुनिया में जैसा कि अशोक साहब ने कहा कि तीसरी दुनिया के लोगों को अपने रास्ते का तायुन अब कर लेना चाहिए। दुनिया वाज़ह तौर पे दो दुनियाओं में तकसीम हो चुकी है और अपना जो दायरा है उसको मज़लूम महकूम अवाम को, अक्वाम को इकट्ठे होकर एक ताकत की शक्ल में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। ये जो साम्राज्य है ये डाइंग फोर्स है
जी।
ये आज नहीं तो कल इसके ये जवाल पजीर साम्राज्य है
जी।
और इसको सहारा ज़्यादा अरसा कोई भी नहीं दे पाएगा। चुनाचे गरीब और मज़लूम महकूम अवाम अक्वाम को इस वक्त इकट्ठा होकर, और वो कौमें जो उठ रही हैं, चीन, रूस, शावेज का जिक्र किया उन्होंने, और तीसरी दुनिया में लैटिन अमेरिका में ईरान एक इमर्ज हो चुकी है ताकत, इन तमाम इमर्ज होने वाली ताकतों के साथ अपने आप को जोड़ना चाहिए और एक नई दुनिया जो उभर रही है उसके साथ मिलकर साम्राज्य का खात्मा जो कि हो रहा है उसमें मदद करनी चाहिए ताकि साम्राज्य से छुटकारा और दुनिया आज़ादी, माशी सियासी आज़ादी हासिल कर सके। जी
जी आगा मसूद हुसैन साहब, अभी जैसा कि जैदी साहब ने कहा कि वक्त आ गया है कि जो महकूम कुवतें हैं या जो अमेरिका की हमेशा जद पर रहे हैं अब उनको उठ खड़ा होना चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ आपने देखी होगी और मुझसे बेहतर जानते हैं यकीनन कि इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी से मुतालिक जो सालाना रिपोर्ट या फहरिस्त या लिस्ट होती है वो दो तीन ममालिक ही जारी करते हैं, अमरीका है, कनाडा है या बरतानिया है। तो क्या इनको किसी ने हक दिया है? एक और दूसरी बात है, अगर हक नहीं दिया है तो क्यों नहीं रूस, चीन, हत्ता इस्लामी ममालिक में आप पाकिस्तान को ले लें या जो तीसरी दुनिया के ममालिक हैं, हिंदुस्तान है, ब्राज़ील है, जनूबी अफ्रीका है, या ये अगर अपने अपने तौर पर नहीं जारी कर सकते तो नावाबस्ता तहरीक नैम की शक्ल में जारी करें, OIC की शक्ल में जारी करें। ऐसा क्या वक्त नहीं आ गया कि ये लोग भी जो है वो इकदाम का जवाब दूसरे इकदाम जवाबी इकदाम के शक्ल में दें, उसकी सूरत में दें?
देखिए मेरा ख्याल है जवाबी इकदाम तो ये ममालिक नहीं करेंगे जिनका आपने नाम दिया, लेकिन कम से कम हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात तो मैं कर सकता हूँ कि इनके यहाँ ह्यूमन राइट्स कमीशन मौजूद है और ये अपने भी मतदी की रिपोर्ट जारी करते हैं और ये कि उसमें किसी तरह का खौफ खतरा भी नहीं होता उनको, और बताते हैं कि पाकिस्तान में ये हुआ और हिंदुस्तान की जो रिपोर्ट्स हैं वहाँ की कमीशन जो है शाये करते हैं। लेकिन ये वो अमरीका को चैलेंज नहीं करते, उसकी वजह यह है कि आपको मेरा ख्याल है कि सिलसिले में सुन के अफसोस होगा कि बाद ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट्स जो आती हैं पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, उनको खास तरीके से पैसे भी मिलते हैं एक NGO की सूरत में, ताकि ये
नहीं, मैं वजारत खारजा की सतह की बात करूँ आगा साहब।
जी जी देखिए वजारत खारजा की सतह पर तो नहीं है, आप सही कह रहे हैं कि वो तो नहीं है, लेकिन ये कि आप जाहिर है कि आप तब्दीली तो बहुत तेजी से आ रही है। और देखिए बात असल ये हुआ कि इस्तेहसाल इतना हुआ है मतलब लोगों का और गरीबों का और आवाम का और दानिश्वरों का कि अब वो ये सोचने में मजबूर हैं कि भाई वो आखिर अपनी नस्ल को, आंदा नस्लों को किस किस्म की जिंदगी देना चाहते हैं, वो इसी तरीके से काशालशी करेंगे, गुर्बत से वो डूबे रहेंगे और कोई उनकी सुनवाई नहीं होगी, कोई मसीहा नहीं आएगा। तो ये सोच बड़ी तेजी से आ रही है, लोग लिख रहे हैं, ऐसे नॉवेल्स आ रहे हैं, ऐसे अफसाने आ रहे हैं, ऐसे आर्टिकल्स आ रहे हैं, बड़े थॉट प्रोवोकिंग आर्टिकल्स आ रहे हैं। खुद अमरीका के तरह से आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, नॉन चैलेंजी का आपने नाम सुना होगा, इसके कुछ आर्टिकल लिखते हैं, वो अमरीका के कॉलेज के सख्त मोतरज हैं, अमरीका के जो ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट आती है वो मोतरज हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना खुलकर सामने आ रही हैं, लोग एक्चुअली तब्दीली चाहते हैं। एक जमाना हो गया, एक तकरीबन दूसरी जंग अजीम के बाद से इंसान जो है मुस्तकिल पिस रहा है साम्राज्य के हाथों, वो लड़ाई भी हो रहा है, बेपना लड़ाई हो रही है। अब देखिए साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया क्या बंदा देख लीजिए, कि एक नॉर्थ कोरिया को छोटे से मुल्क को वो उन्होंने मतलब ये कि फंसा रखा है। अभी एक महीने पहले अमेरिका ने और साउथ कोरिया और जापान ने मिलकर वहां पर एक्सरसाइज की थी, मिलिट्री एक्सरसाइज की थी। तो जिम ने बाकायदा ये अमेरिका से दरखास्त की एक महीने पहले, मैं आपको ये मुस्तरद खबर बता रहा हूँ, उन्होंने ये कहा कि हमसे आप मजाकरात करें, हम नहीं चाहते कि कोई एटमी हथियार जो है उसका इस्तेमाल किया जाए या कि हम मजीद एटमी धमाके करें। लेकिन यह है कि ओबामा की हुकूमत ने उनको मना कर दिया और ये कि उन पर मजीद मतलब दबाव किया और अपने फौज ले आए, अपने खास कैरियर भी ले आए। तो ये चीजें जो है ना, ये इस बात की अहमात है कि छोटी कौमें जो है ये समझ रही है कि हमें मुत्तहद होना चाहिए। और सबसे जो खुशी इस पूरे तीसरी दुनिया में लोगों को मिली है वो चीन और रूस का इत्तेहाद है, और उस इत्तेहाद की वजह से एक नई रोशनी पैदा हुई है। लोग समझ रहे हैं कि भाई कब तक हम इनके काफिले रहेंगे, कब तक हमें ये मारते रहेंगे लोगों को।
आगा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आगा साहब हम आपके शुक्रगुजार हैं, नवाजिश आपकी। चलते हैं इस वक्त दिल्ली स्टूडियो जहां पर इस वक्त मौजूद हैं हिंदुस्तान के सीनियर और सरकर्दा कलम निगार और सहाफी जॉन दयाल साहब। अदा वजह जनाब, जान दयाल साहब अभी बात हो रही थी कि अमेरिका ने मैग्नेस्टी कानून के तहत
एक बात
जी तकरीबन 18 रूसी अहदेदारों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। बात इसी मौजू पर चल रही है। सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका को इस तरह का हक किसने दिया है कि वो दूसरे मुल्कों में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के ताल्लुक से ब्लैक लिस्ट जारी करता फिर।
किसी ने हक नहीं दिया, मगर क्योंकि अमीर देश है, बाकी देश गरीब हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, तो अपने आप हकूक ले लेता है दूसरों को परेशान करने के लिए, दूसरों को तंग करने के लिए। और जो बात मैं कहना मांग रहा हूं कि काफी देर से मैं सुन रहा था, अब वो पुरानी वाली कोल्ड वॉर नहीं है, अभी न्यूक्लियर कन्फ्रंटेशन नहीं है। तो जब हम जिक्र करते हैं अमरीका को करेक्टली बहुत ठीक तरीके से कंडेम करते हैं, अमरीका में भी बहुत ह्यूमन राइट वायलेशन होती है काले आदमियों के खिलाफ, बाकी लोगों को जो पकड़ के ले जाता है वेस्ट एशिया से उनके खिलाफ बहुत कुछ होता है, मगर जो पुराने जमाने की कोल्ड वॉर थी जिसमें न्यूक्लियर कन्फ्रंटेशन था वो कन्फ्रंटेशन नहीं है। और ये बहुत अहम बात है, और ये बहुत इस बात को हमसे इसको छोड़ना नहीं चाहिए, इसको मद्देनजर रखना चाहिए, क्योंकि आने वाले जमाने में हम फिर देखेंगे कि रशिया और अमरीका ये पैंतरेबाजी करते रहते हैं, मगर बड़े इश्यूज के ऊपर इनको इकट्ठा आना पड़ेगा। अभी कोरिया का मामला पक रहा है, उसको किसी भी हालत में नजरअंदाज नहीं कर सकते हम, वहां पर देखना पड़ेगा कि अमेरिका और रशिया और चाइना किस तरीके से इकट्ठा काम करते हैं। जहां तक रही रशिया की बात, रशिया आपने ठीक कहा, यल्सिन वाला रशिया नहीं है, ये पुतिन का रशिया। पिछले 7 साल से 8 साल से इसने काफी अपने आप को संभाला है और अमरीका को कई बार इसे चैलेंज किया है, इराक में इसे चैलेंज किया था और बाकी देशों में भी चैलेंज किया, पूरी बात बन नहीं पाई, वहां पर अमेरिका हावी रहा। मगर अभी सीरिया में हम देख रहे हैं, ईरान में देखा, हिंदुस्तान के मामले में देखा, अमेरिका पूरी मनमानी नहीं कर पा रहा है। एक और भी बात रहेगी, आपने बड़ी हल्के से जिक्र किया, मगर थर्ड वर्ल्ड के जो पुराने देश हैं, जो नैम नॉन अलाइन मूवमेंट था, उसका फिर हल्के हल्के उठ रहा है। तो अब अमरीका की अगले 5 साल में, अगले 10 साल में ओबामा के जाने के बाद वो उतनी तड़ी नहीं रहेगी जो पहले थी कोल्ड वॉर के अंत के बीच में यल्सिन के जमाने में। तो ये बात हमको देखनी चाहिए और इस बात में ही हमारा एक तरीके से आगे का भला है। अमेरिका को किसी ने हक नहीं दिया है किसी और देश के खिलाफ लिस्ट लगाए, अगर हम भी चाहें तो अमेरिका के खिलाफ लिस्ट लगा निकाल सकते हैं, वहां पे भी बड़ी मनमानी हो रही है, हिंदुस्तान के सरदारों को कत्ल कर दिया जाता है कुछ और समझ के, रेस के हिसाब से, कलर के हिसाब से, इनकम के हिसाब से अत्याचार होते हैं। गुआंतानामो बे की बार बार बात आई है, वहां पर जो अत्याचार हुए हैं और जो अमरीकी फौज ने गल्फ के एरिया में जो अत्याचार किए हैं वो तो बेइंतहा थे, उससे आगे बढ़ के बात हो रही है। आप रशिया ने जो लिस्ट निकाली है, आप इन्होंने लंदन से स्थितिक पूर्व ने बोला, वो लिस्ट एक पॉलिटिकल लिस्ट है जिसमें अमेरिका को वहां चोट दी गई है जहां पे अमेरिका दोषी है, जहां पे उसने कानून को, इंटरनेशनल कानून को लांघा है, कुचला है। अमेरिका की लिस्ट ऐसी है, ऐसी गहरी नत्थू गहरी लिस्ट है जिसमें कोई खास दम नहीं है।
जी जान दयाल साहब, अमरीका ने रूस के खिलाफ ये जो ब्लैक लिस्ट जारी की है इंसानी हकूक के ताल्लुक से, एक ऐसे वक्त जारी की है अभी तीन ही रोज़ कबल अफगानिस्तान के सूबे कोनड़ में अमेरिका के जंगी तैयारों ने हमला करके 13 मासूम बच्चों को हलाक कर दिया। आप क्या कहेंगे?
बिल्कुल बिल्कुल, और ये पहली बारी नहीं है, कई बारी बच्चों के ऊपर ड्रोन अटैक होते हैं, ऐसे हवाई जहाज जिसमें आदमी भी नहीं है, जो मशीनी हवाई जहाज हैं जाकर अटैक करते हैं, बच्चे मौत के घाट उतारे जा रहे हैं, ये तो एकदम ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। मैं एक बार बताना मांगता हूं, जिनेवा में यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट काउंसिल के अंतर्गत यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू आता है हर 4 साल बाद, अमरीका भी उसके सामने आता है और वहां पर इसके सारे काले करतूत सामने आ जाते हैं, बाकी देश इसको सवाल करते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि अमरीका को चैलेंज नहीं किया जा रहा है, यह बात ठीक है कि अमरीका को जिस हद तक चैलेंज किया जाना चाहिए उस हद तक चैलेंज नहीं किया जा रहा है, मगर अमेरिका भी अंदर से काफी खोखला है। अभी आपने फिर देखा वहां पे जो इकोनॉमिक इंडेक्सेस हैं बुरी तरीके से गिर रही है, अभी भी वो बाहर नहीं उभरा है, तो उसको भी अपने आप को कुछ हद तक पैंतरेबाजी करनी मांगता है, अपना हवा दिखानी मांगता है, अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स को भी शांत रखना मांगता है। तो यहां पर मेरा ख्याल है रशिया ने एक तरीके से बड़ा मुंहजोर जवाब दिया है, बड़े जोर का थप्पड़ मारा है जिससे अमेरिका कुछ हद तक अपनी मियाद में वापस अपने आ जाएगा।
जी जान दयाल साहब, अभी रूस के वज़ीर ख़ारिजा सरगई लावरोफ ने 2 रोज़ कबल अपने वाज़े लफ्ज़ों में बयान में कहा कि ग्वांतानामो जेल जो है ये अमेरिका के लिए बाइस शर्म और उसकी पेशानी पर बदनुमा दाग है, और आप यकीनी तौर पर हमसे बेहतर जानते हैं कि इन दिनों अमेरिका में मुख्तलिफ शहरों में, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस वगैरह वगैरह, शिकागो में ग्वांतानामो बे जेल बंद किए जाने को लेकर मुतालबे हो रहे हैं, मुजाहरे हो रहे हैं, हत्ता लोग जो हैं वो ग्वांतानामो के कैदियों की तरह नारंगी रंग के लिबास पहनकर व्हाइट हाउस के सामने से गुजरे। तो आप क्या समझते हैं कि वो ओबामा जिन्होंने ये वादा किया था जनवरी 2009 में कि हम जनवरी 2010 तक ये जेल बंद कर देंगे, अब तक ना बंद कर सके, कि क्या वजूहात हैं, कैसा प्रेशर है उनके ऊपर और किन लोगों का प्रेशर है?
ग्वांतानामो बे तो बंद करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। ओबामा के ऊपर, ओबामा आप देखिए बड़े नाजुक तरीके से जीते थे, इनके ऊपर भी बहुत प्रेशर है, इनको भी अपने आप का अपना राइट विंग इनको दिखाना पड़ता है, घड़ी घड़ी इनको इसराइल के साथ अपनी दोस्ती दिखानी पड़ती है, घड़ी घड़ी कहना पड़ता है कि किसी भी हद तक हम इसराइल की मदद करेंगे। इनके ये 2-3 जो चीज़ें हैं, वैसे में अपने पाँव रखना, सीरिया के खिलाफ बोलना, इसराइल के फेवर में बोलना, इनके ये कुछ ताश हैं, कुछ चेस बोर्ड के ऊपर कुछ मोहरे हैं जिनको इनको करना ही पड़ता है, मगर अमेरिका के अंदर जो शांति अमन पसंद लोग हैं, जो ह्यूमन राइट्स के असली लोग हैं, वो बहुत जोर से बड़ी और कोर्ट्स में जा रहे हैं, पार्लियामेंट में, इनके सीनेट में, कांग्रेस में बात उछल रही है। तो ऐसी बात नहीं है कि अमरीका में आंख मूंछ के पड़े हुए हैं ग्वांतानामो बे के बारे में जाते नहीं है। ग्वांतानामो बे एक कोड है, एक दाग जैसे बताया गया था, एक दाग है और उसको तो किसी न किसी दिन बंद होना ही पड़ेगा।
बहुत शुक्रिया आपका। जैदी साहब, मेरे पास सिर्फ 1.5 मिनट का वक्त बचा है, बहुत ही माजरत के साथ। आपने अपनी गुफ्तगू में शाम की तरफ भी इशारा किया, अभी रूस की तरफ से आज ही बयान आया है कि अगर अमेरिका की तरफ से या उसके इतिहादियों की तरफ से सलामती कौंसिल में कोई और करारदाद शाम के ताल्लुक से लाई गई तो हम उसको वीटो कर देंगे। क्या आप समझते हैं कि ये जो मैग्नेस्टी ब्लैक लिस्ट जारी की गई है रूस पर, ये इसी करारदाद को मंजूर कराने के लिए, रूस पर दबाव डालने के लिए तो एक इकदाम नहीं था आपके ख्याल में?
जी यकीनन, और रूस पर बेशुमार दबाव डालने की कोशिश की गई है, और रूस ने और चीन ने भी बहुत वाज़े स्टैंड लिया है, और सीरिया के मामले में बिलखसूस, मतलब वो सब कुछ जो जैसा शुरू में मैंने कहा अमेरिका जो चाहता है वो अब उस तरह नहीं हो पा रहा, और रूस उसकी बिल्कुल उस तरह से मदद या हिमायत करने को तैयार नहीं है जिस तरह से 1973 की वो जो था रेजोल्यूशन लेकर आए और लीबिया पर चढ़ दौड़े, तो वो सब कुछ अब नहीं हो पाएगा और रूस यकीनन वीटो करेगा। सीरिया का मामला बहुत डिफरेंट है, जैसा कि अशर साहब ने कहा, वहाँ इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, वो फौज जो है वो किसी एक उसकी फिरके की नहीं है, उसमें शिया सुन्नी ईसाई सब लोग शामिल हैं, वो कौम परस्त, वो एक नेशनलिस्ट फौज है, और वो कोई किराए के टट्टू जिसको कहते हैं वो सिपाही नहीं है।
जी जैदी साहब, हम बहुत माजरत चाहते हैं आपसे, वक्त हमारा बिल्कुल खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आपका, और जान जाल साहब आपके भी हम शुक्रगुजार हैं, और आगा मसूद साहब के भी, और आप मोजज नाजीन के। नाजीन, आपने हमारे मेहमानों की गुफ्तगू को मुलाहजा फरमाई, अमरीका को यह हक किसी ने नहीं दिया और अमरीका को यह हक नहीं पहुँचता कि जो सबसे ज़्यादा खुद अपने यहाँ इंसानी हकूक या दीगर मुल्कों में ड्रोन हमलों की शक्ल में या गुआंतानामो और अबू गरीब और बगराम जेल की शक्ल में इंसानी हकूक की पायमाली करता है, वो दूसरों के खिलाफ इंसानी हकूक की पायमाली की लिस्ट जारी करे। बहरहाल ये उसका अपना हरबा है, लेकिन अब दुनिया बेदार हो चुकी है। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।